ईशानी सुबह सुबह तैयार होकर नीचे आई। रुद्राक्ष उसके साथ में था। रुद्राक्ष को लगा ईशानी और वो साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन उनके बीच में मोक्ष आ गया। वो ईशानी को कहीं लेकर जा रहा था। उन दोनों के साथ में इस तरह बिना बताए जाने पर रुद्राक्ष को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने रुद्री के सामने कुछ रिएक्ट नहीं किया। आखिर उसे एक अच्छा हस्बैंड होने का दिखावा जो करना था। उनके जाते ही रुद्री ने रुद्राक्ष के हाथ को पकड़कर कहा, इन दोनों की दोस्ती काफी अच्छी है, तुम्हें इन्हें साथ देखकर जलन तो नहीं महसूस होती ना? रुद्राक्ष ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं मॉम, वैसे भी रिश्ते में मोक्ष उसका देवर लगता है, तो मुझे क्यों जलन होगी? दोनों किसी काम से या किसी केस के सिलसिले में बाहर गए होंगे, चलिए हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, रुद्री ने मुस्कुराकर जवाब दिया। रुद्राक्ष को मजबूरन रुद्री के साथ जाना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ मोक्ष और ईशानी इस वक्त गाड़ी में थे। मोक्ष ड्राइव कर रहा था जबकि ईशानी चुपचाप उसके पास में बैठी हुई थी। वो दोनों कुछ देर तक चुप थे, फिर अचानक दोनों एक साथ जोर से ठहाका मारकर हंसे। मोक्ष ने उसने अपनी हंसी कंट्रोल की और मुस्कुराते हुए ईशानी से कहा, रुद्राक्ष का चेहरा देखने लायक था, मॉम के सामने कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। रात को उन्होंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? अभी तक तो कुछ नहीं किया, पर वो बहुत मूडी है, मुझे उसके साथ में थोड़ा डर लगता है। जलन तो बहुत हो रही होगी उसे हम दोनों को साथ में देखकर, पर जलता रहे, बहुत सपोर्ट करनी है उसे अपनी फैमिली की। जब तक वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट खड़े होकर सच का साथ नहीं देगा, मैंने भी डिसाइड कर लिया है, मैं उसको लेकर कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाने वाली हूँ, ईशानी ने सख्ती से जवाब दिया। मोक्ष ने उसकी बात पर हामी भरी। कुछ पल रुककर ईशानी ने फिर कहा, उन्होंने माँ को किडनैप करने का कहा, तुम्हें पता है वो तुम्हें परेशान करने के लिए झूठ रहे हैं, दीपिका आंटी की सिक्योरिटी सर ने ले रखी है, मोक्ष ने जवाब दिया। हाँ जानती हूँ, उनसे छुपकर मैंने माँ से बात भी की थी, उन्हें क्या लगा मुझे एडिटेड पिक्चर्स का पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी मैं घबरा गई थी, ईशानी ने बुझी आवाज में कहा। मोक्ष जवाब में बोला, वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो दिल के बुरे नहीं है, क्योंकि मेरी मॉम का बेटा बुरा हो ही नहीं सकता, दिक्कत उस फैमिली में है, सब सच जानते हुए भी रुद्राक्ष उनका फेवर करते हैं, तब मुझे गुस्सा आता है, बाकी मैं अच्छे से जानता हूँ कि दिल से वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, खासकर तुम्हें, मैंने महसूस किया है कि उनके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। कुछ कह नहीं सकते मोक्ष, उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जानबूझकर मुझे परेशान करता है, उसका जब मन करता है तो वो करीब आ जाता है, और जब मन नहीं करता तो बेगानों की तरह बिहेव करने लगता है, तब तो उसे मैं टच भी करूं तो मुझे ही बातें सुनाने लगता है। ईशानी ने मोक्ष को सब कुछ बता दिया, वो उसका बेस्ट फ्रेंड जो था। थोड़ी देर तक रुद्राक्ष के बारे में बात करने के बाद अचानक मोक्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। उसने ईशानी से कहा, हम बस ऑफिस पहुंचने वाले ही हैं, वो आलिया के केस के बारे में बात करना चाहते हैं और तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे, एक बार फिर सोच लो, तुम खुराना फैमिली से टकराने जा रही हो, हर एक शख्स किसी भी हद तक जा सकता है बदला लेने के लिए, इससे तुम्हारा और रुद्राक्ष के रिलेशन भी खराब हो सकते हैं, जो कि पहले से ही ठीक नहीं है। वहां पहुंचने से पहले मोक्ष ने एक बार फिर ईशानी से पूछा। ईशानी ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें बंद थीं और बार बार उसकी आंखों के सामने रुद्राक्ष और उसके अच्छे मोमेंट्स आ रहे थे। फिर उसने खुद को सख्त करके कहा, मैंने फैसला कर लिया है, अगर रुद्राक्ष सच में मुझसे प्यार करते हैं तो मेरा ही साथ देंगे। और उन्होंने आलिया का साथ दिया तो? मोक्ष ने ईशानी की तरफ देखकर गंभीर स्वर में पूछा। तो फिर जो हमारे रिश्ते में थोड़ी बहुत उम्मीद है वो भी टूट जाएगी, शायद उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से नफरत भी करने लगे, पर मैं अपनी बहन की मौत को भूल नहीं सकती हूँ, ईशानी ने उदास चेहरे के साथ कहा। ऐसे ही बातों बातों में उनका सफर कट चुका था। लगभग डेढ़ घंटे बाद वो एक म्यूजियम में पहुंचे जहाँ की सिक्योरिटी काफी टाइट थी। म्यूजियम में सिक्योरिटी चेक करवाने के बाद रुद्राक्ष और ईशानी उसके प्राइवेट एरिया में गए जहाँ एक ऑफिस बना हुआ था। दुनिया के लिए वो एक म्यूजियम था, जबकि उसके अंदर बना ऑफिस सीक्रेट एजेंसी ऑफिस था। काफी सारे सिक्योरिटी चेक से गुजरने के बाद रुद्राक्ष और ईशानी एक शख्स के केबिन में बैठे हुए थे। उसके पास में एक औरत भी थी। दोनों उम्र में लगभग 40 और 38 साल के थे और हस्बैंड वाइफ थे। डिफेंस फील्ड में होने की वजह से वो दोनों काफी फिट और सख्त नजर आ रहे थे। वहां बैठी औरत जिसका नाम प्रतिज्ञा सिंह था, तो वहीं उसके पास में बैठे उसके हस्बैंड का नाम शिवम सिंह था। दोनों काफी सख्त थे, फिर भी ईशानी को देखते ही उनके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। प्रतिज्ञा ने ईशानी को बैठने का इशारा किया और फिर कहा, जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ, तुम काफी ब्रेव हो ईशानी, पर इस बात को भूल नहीं सकती तुम कि तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं हुई है, तुम हम ऑफिसर्स में से एक नहीं हो। अच्छे से याद है मैम, और मैं भूलना भी नहीं चाहती। कोई इंसान अपनी जान खतरे में डालकर अपना चेहरा इस तरह माफिया की दुनिया के सामने रिवील नहीं करना चाहता जब तक कि उसकी कोई बड़ी मजबूरी न रही हो, ईशानी ने धीमी आवाज में कहा। इससे पहले कि ईशानी इमोशनल होती, शिवम सख्त आवाज में बोले, पुरानी बातें याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके बारे में मोक्ष ने मुझे बताया। डोंट वरी, लीगली तुम दोनों की शादी रजिस्टर्ड नहीं थी, ट्रेडिशनल शादी को भी रद्द करवाया जा चुका है, तो तुम बेफिक्र रहो। अब आगे की सोचना है। रुद्राक्ष हुराना के चलते बहुत से लोग तुम्हें जान चुके हैं, खास करके वो लोग जिन्हें नहीं जानना चाहिए। उन्हें तुम्हारा असली नाम भी पता चल चुका है। मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा ईशानी कि तुम इस काम को छोड़ दो। ईशानी ने उनकी बात पर हामी भरते हुए कहा, मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी। मैंने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के चलते उस प्रोफेशन को ज्वाइन किया था। अब काफी हद तक चीजें सुधर गई हैं, तो मैं हैंडल कर सकती हूँ। ईशानी के बोलते ही मोक्ष ने कहा, इसके आगे की सिक्योरिटी हम देख लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको जिस केसे के बारे में बताया था उसके बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली ईशानी चाहती है कि उसकी बहन को इंसाफ मिले। मोक्ष की बात के जवाब में प्रतिज्ञा ने कहा, इंसाफ जरूर मिलेगा और मिलना भी चाहिए। इस देश का कानून पैसों के आगे छोटा नहीं पड़ सकता। तुम फिक्र मत करो ईशानी, हमारे पास जो भी सबूत मौजूद हैं उससे हम तुम्हारी बहन को इंसाफ दिलाएंगे। मोक्ष ने मुझे एक डायरी के बारे में बताया था, क्या वो डायरी अभी भी तुम्हारे पास है? ईशानी ने नामे सिर हिलाकर कहा, नहीं, वो अब मेरे पास में नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास कोई सबूत नहीं है सिवाय उन मॉडल्स के जो आलिया खुराना के खिलाफ केस करना चाहती है। उन्हें भी वो लोग दबाने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम उनकी सिक्योरिटी की परवाह मत करो, हमसे स्ट्रांग नहीं हो सकती खुराना फैमिली, शिवम ने उसे आश्वासन देते हुए कहा। थोड़ी देर इधर उधर की बातचीत करने के बाद शिवम ने किसी को कॉल किया। कॉल पर बात हो जाने के बाद उसने ईशानी से कहा, अगले हफ्ते तक ऋषानी का केस रीओपन हो जाएगा। प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर आलिया खुराना को ही देखा जा रहा है, क्योंकि आखिरी बार वो उसी की वैनिटी में थी। दोनों साथ में ड्रिंक कर रही थी और बाकी सब वो मॉडल्स हमारे लिए सबूत के तौर पर गवाही दे देगी। तुम फिक्र मत करो, हम उसे सजा दिलाकर रहेंगे। ईशानी ने मुस्कुराकर उनकी बात पर हामी भरी और फिर उन्हें थैंक्स कहा। पूरी बात हो जाने के बाद मोक्ष और ईशानी वहां से जा चुके थे। उनके जाते ही प्रतिज्ञा ने शिवम की तरफ देखकर कहा, इतनी कम उम्र में भी इसका जज्बा कमाल का है। मैंने इसे कहा था कि ये ऑफिशियली ट्रेनिंग कर ले, पर इसे लॉयर ही बनना है।
हाँ, मैंने भी इसे हमेशा अपनी छोटी बहन के तौर पर ही देखा है। डोंट वरी, हम इसका पूरा साथ देंगे, हर तरीके से इसकी हेल्प करेंगे। बस आगे इसे अपने प्रोफेशन में रखकर मैं इस पर कोई खतरा नहीं डालना चाहता। प्रतिज्ञा, तुम जानती हो माफिया कितने क्रूअल होते हैं। उन्होंने ईशानी को देख लिया है, लकीली वो पकड़ी नहीं गई, वरना बहुत बड़ा टॉर्चर होता उसके साथ, शिवम ने जवाब दिया। शिवम और प्रतिज्ञा उसके बाद अपने काम में लग गए थे, तो वहीं मोक्ष और ईशानी वहां से फ्री होने के बाद लॉ फर्म में पहुंचे थे। वहां से मिस्टर विकास खन्ना से मिलकर ईशानी काफी खुश थी। उसकी पुरानी लाइफ वापस पहले की तरह उसे मिल गई थी। इससे ईशानी को कहीं ना कहीं राहत मिल रही थी, पर वो रुद्राक्ष को भी मिस कर रही थी। रुद्राक्ष ने पूरे दिन में उसे एक बार भी कॉल नहीं किया था। शाम को थककर ईशानी ने रुद्राक्ष को कॉल किया। रुद्राक्ष उस वक्त रुद्री के साथ टाइम स्पेंड करते हुए मूवी देख रहा था। ईशानी का कॉल देखकर भी उसने जानबूझकर इग्नोर किया। ईशानी उसे लगातार कॉल करती रहेगी, पर रुद्राक्ष ने जानबूझकर कॉल अटेंड नहीं किया। रुद्राक्ष के कॉल रिसीव ना करने पर ईशानी घबरा गई और अपना काम बीच में छोड़कर रुद्री के घर पर पहुंची। ईशानी को इस तरह डेस्परेट देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। उसने रुद्री के सामने अनजान बनते हुए कहा, इतनी जल्दी आ गई वाइफी, मोक्ष ने कहा था तुम दोनों को पूरा दिन लग जाएगा, और हालत देखो अपनी। रुद्राक्ष की बात पर सहमति जताते हुए रुद्री ने कहा, कुछ हुआ है क्या? तुम परेशान लग रही हो, ऐसे लग रहा है जैसे दौड़ कर आई हो, बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं। कुछ नहीं हुआ, ईशानी ने इतना ही कहा। वो रुद्राक्ष के चेहरे को देख रही थी। जब रुद्राक्ष ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया तो एक पल के लिए ईशानी को यही लगा कि वो उसे छोड़कर चला गया है, और ये फीलिंग बहुत बुरी थी। ईशानी अपना पूरा काम छोड़कर रुद्राक्ष का चेहरा देखने के लिए घर तक आ गई थी। अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक तुम्हारे लिए कुछ नाश्ते में लेकर आती हूँ, रुद्री बोली और फिर किचन की तरफ चली गई। उसके जाते ही ईशानी नम आंख से रुद्राक्ष की तरफ देख रही थी। रुद्राक्ष ने उसके चेहरे की तरफ देखकर ईविल स्माइल करते हुए कहा, एक दिन में तुम्हारी ये हालत हो गई वाइफी, सोचो उस वक्त मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी जब तुमने सबके सामने ये स्टेटमेंट दिया था कि हमारी शादी तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती, तुम तो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर जाने वाली थी, बोलते हुए रुद्राक्ष ईशानी के बिल्कुल करीब आ गया। ईशानी ने गहरी सांस ली और रुद्राक्ष की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, तो कौन सा आपको इससे फर्क पड़ रहा है? आप तो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे हो गया है तो आप इसका फायदा उठा रहे हैं, ईशानी ने इतना ही कहा और फिर दौड़कर ऊपर कमरे में चली गई। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष के चेहरे के भाव सर्द हो गए थे। वो धीरे से बोला, अगर प्यार होता तो दूर जाने के बारे में सोचती ही नहीं और ना ही कोई उल्टी सीधी हरकत करती। अब गलती की है तो सजा तो मिलकर रहेगी ना वाइफी, ताकि आगे से तुम गलती से भी गलती ना करो। रुद्राक्ष ईशानी को रियलाइज करवाने के लिए उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहा था, या यूं कहें कि उसे सजा दे रहा था, क्योंकि वो सबके सामने उसे छोड़कर चली आई थी। अभी तक रुद्राक्ष को यह पता नहीं था कि ईशानी आलिया के खिलाफ क्या कर रही है। सोचो, जब उसे पता चलना था तो तब उस वक्त रुद्राक्ष का गुस्सा किस हद तक बढ़ना था। बीच एक बड़ी सी जंग शुरू होने वाली है। कहानी के साथ बने रहिएगा, पाठ पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पाठ पर मिलते हैं।